पृष्ठ संख्या 102। पश्चिम एशिया के देश अफगानिस्तान। सत्ता प्राप्त करते ही अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ सोवियत संघ ने जो संधि की थी और जिस संधि से अफगानिस्तान को अपनी आज़ादी की जड़ें मजबूत करने में मदद मिली, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अमानुल्लाह खान ने अपने देश के आधुनिकीकरण के लिए भी कुछ कदम उठाए, लेकिन 1929 में उसे अपदस्थ कर दिया गया और मुहम्मद नादिर शाह अफगानिस्तान का शाह बन बैठा। नादिर शाह के शासनकाल में एक नया संविधान लागू किया गया जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान को एक संवैधानिक राजतंत्र बनाना था। ईरान। क्रांति के बाद रूस ने 1907 के उस आंग्ल रूसी समझौते का त्याग कर दिया था जिसके अनुसार ईरान का एक हिस्सा रूसी प्रभाव क्षेत्र के अधीन कर दिया गया था। अंग्रेजों को क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार से चिंता सताने लगी थी और ईरान में अपने तेल संबंधी हितों पर खतरा मंडराता दिखाई देने लगा था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लेने की धमकी दी। 1919 में उन्होंने ईरान सरकार के साथ एक समझौता किया जिससे ईरान की सेना और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश कब्जे और ब्रिटेन के साथ ईरान की सरकार के समझौते के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में विद्रोह भड़क उठे। ईरानी साम्यवादियों ने इन विद्रोह का लाभ उठाकर एक सोवियत गणतंत्र स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। मगर 1921 से रजा खान नामक एक सैनिक अफसर की सहायता से ईरान की ब्रिटेन समर्थक सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। नई सरकार ने क्रांतिकारी विद्रोहों को तो निष्ठुरतापूर्वक दबा दिया, लेकिन साथ ही ब्रिटेन के साथ उस समझौते को भी रद्द कर दिया गया जिसने ईरान को कमोवेश ब्रिटेन का एक संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट बना दिया था। बहुत से ईरानी रजा खां को ईरान के मुस्तफा कमाल के रूप में देखते थे और उन्होंने उसके संपूर्ण सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्नों में अपना समर्थन दिया। 1925 में मजलिस नामक ईरानी संविधान सभा ने ईरान के शासक को विधिवत सत्ताच्युत कर दिया और रजा खान को ईरान का शाह बना दिया। रजा खान के राजवंश को पहलवी राजवंश कहते हैं। नए शाह ने ईरान की आधुनिक स्थिति बनाने के लिए कई कदम उठाए। उद्योग तथा परिवहन का विकास किया गया और आधुनिक शिक्षा दाखिल करने तथा मुल्लाओं के प्रभाव पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। विधि प्रणाली में भी अनेक सुधार किए गए। आंग्ल ईरानी तेल कंपनी का महत्व तो बना रहा, लेकिन उसके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ईरान की सरकार को जाने लगा। किंतु इन प्रगतिशील तथा सुधारवादी कदमों के बावजूद शाह का शासन अत्याचार पूर्ण था और उससे आम लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। इराक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इराक, फिलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन ब्रिटेन को मैंडेट के रूप में सौंप दिए गए थे। इराक को ब्रिटेन के सुपुर्द करने के फैसले के खिलाफ वहां विद्रोह भड़क उठा जिसे ब्रिटिश सेना ने दबा दिया। 1921 में अंग्रेजों ने फैसल को, जिसे फ्रांसीसियों ने सीरिया से अपदस्थ कर दिया था, इराक का राजा बना दिया, लेकिन देश का वास्तविक सैनिक राजनीतिक तथा आर्थिक नियंत्रण अपने ही हाथों में रखा। इराक के समृद्ध तेल संसाधन भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। 1930 से इराक को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई और उसके पीछे और शीघ्र ही बाद वह राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। लेकिन ब्रिटिश सेना इराक में कायम रही और वहां की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। इराक की इस ब्रिटेन समर्थक सरकार को संवैधानिक राजतंत्र का रूप दे दिया गया। 1936 में राष्ट्रीय सुधार दल, नेशनल रिफॉर्म पार्टी ने सेना के मदद से ब्रिटेन समर्थक सरकार को पदच्युत कर दिया और भूमि सुधार लागू करने तथा इराक की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से संवारने की कोशिश की। लेकिन साल भर बाद 1937 में ही इस सरकार का तख्ता पलट किया गया और इसके स्थान पर ब्रिटेन समर्थक नूरी सईद के नेतृत्व में दूसरी सरकार प्रतिष्ठित की गई। फिलिस्तीन। अंग्रेजों ने यही नीति ट्रांस जॉर्डन में भी अपनाई। उन्होंने फैसल के भाई अब्दुल्ला को वहाँ का राजा बना दिया और 1928 में उस देश को आज़ादी दे दी, लेकिन सैनिक तथा वित्तीय नियंत्रण अपने ही हाथों में बनाए रखा। फिर भी फिलिस्तीन में ब्रिटिश नीति को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वह क्षेत्र तनाव और टकराव का एक केंद्र बनकर रह गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप और फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक स्वदेश प्राप्त करने का आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन को जायोनिज्म या जायोनवाद कहा जाता है। यूरोप तथा संयुक्त राज्य के यहूदी अपने समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए तथा उनके खिलाफ आम तौर पर बरते जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से बहुत से लोग तो आमूल परिवर्तनवादी राजनीतिक आंदोलनों में भी शरीक हो गए थे, लेकिन जायोनवाद ने घोषणा की कि यदि सभी यहूदी चाहे वे जिस किसी देश में भी रह रहे हों एक राष्ट्र के अंग हैं और फिलिस्तीन में उनका अपना राज्य होना चाहिए, क्योंकि 2500 वर्ष पहले वही उनका अपना एक राज्य था। यहूदियों के बीच जायोनवाद का प्रभाव सीमित ही था, क्योंकि बहुत से यहूदी इसे विभेद पैदा करने वाली विचारधारा मानते थे। उनका ख्याल था कि यदि यह प्रवृत्ति उन्हें उन लोगों से अलग कर देगी जिनके मध्य वे सदियों से रहते चले आए थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ जयोनवादी नेताओं के प्रभाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्रीय गृह राज्य की स्थापना करने का वचन दे दिया था। युद्ध के दौरान अरब राष्ट्रवाद का विकास हुआ था और फिलिस्तीन में ब्रिटिश मैंडेट के स्थापित होते ही गंभीर अशांति फैल गई। फिलिस्तीनियों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को तो दबा दिया गया, लेकिन यहूदी लोग पश्चिमी दुनिया से देशांतरण करके वहाँ भारी संख्या में बसने लगे। यहूदियों ने फिलिस्तीनियों से उनकी कुछ अच्छी से अच्छी जमीनें छीन ली और फिलिस्तीनी भूमिहीन होने लगे। 1919 में फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 58,000 थी। 1934 में वह 9,60,000 हो गई। 1929 में अरबों ने फिलिस्तीन की आज़ादी और फिलिस्तीन में यहूदियों के देशांतरण की समाप्ति के लिए विद्रोह किया। इस विद्रोह को तो कुचल दिया गया और ब्रिटिश सेना तथा पुलिस ने सैकड़ों अरबों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अरब फिलिस्तीनी कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन चलता रहा। 1937 में एक ब्रिटिश शाही आयोग रॉयल कमीशन ने फिलिस्तीन को 3 राज्यों में बांट देने की सिफारिश की। इनमें से एक को अरबों के नियंत्रण में, दूसरे को यहूदियों के काबू में और तीसरे को ब्रिटिश कब्जे में रखने का सुझाव दिया गया। इस सिफारिश को सभी ने अस्वीकार कर दिया और फिलिस्तीन तथा अरब देशों के अरबों ने इसका तीव्र विरोध किया। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें यहूदियों तथा अरबों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था के साथ साथ फिलिस्तीन को 10 साल बाद आज़ादी देने का वादा किया गया। इस बीच यहूदियों के देशांतरण को सीमित कर देना और अंत में बिल्कुल बंद कर दिया जाना था। जमीन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति ने गंभीर रूप धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी एशिया की शांति और सुअस्थिरता के लिए उसके खतरनाक परिणाम निकले। सीरिया और लेबनान। सीरिया और लेबनान मैंडेटों के तौर पर फ्रांस को सौंप दिए गए थे। फ्रांसीसी सेना ने इन दोनों देशों में प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए इन पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों ने सीरिया के शासक फैसल को, जो कि पहले उन्हीं के समर्थन से राजा बना था, अपदस्थ कर दिया। दोनों देशों की जनता फ्रांसीसी शासन का शुरू से ही विरोध करने लगी थी। 1925 में सीरिया में विद्रोह भड़क उठा और विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क दमस्कस सहित प्राय पूरे देश पर कब्जा कर लिया। यह विद्रोह लेबनान के भी कुछ हिस्सों में फैल गया। इसे दबाने में फ्रांसीसियों को 2 वर्ष लगे। इस विद्रोह के दौरान दामिशक पर भारी बमबारी की गई, जिसमें 25,000 लोग मारे गए। फिर भी फ्रांसीसी मैंडेट को समाप्त करने के लिए हड़तालों, प्रदर्शनों तथा शस्त्र अस्त्रों विद्रोह का सिलसिला चलता ही रहा। 1936 में जब फ्रांस में पॉपुलर फ्रंट जन मोर्चा की सरकार बनी, तो फ्रांसीसी सरकार ने सीरिया और लेबनान के प्रतिनिधियों के साथ समझौते करके 3 वर्ष बाद उन्हें आज़ाद कर देने का वादा किया। लेकिन बाद में फ्रांसीसी सरकार वादे से मुकर गई और सीरिया तथा लेबनान दोनों आज़ादी हासिल करने में असफल रहे।